SBS हिंदी।
कुछ ही सप्ताह में अब यहाँ फेडरल चुनाव होने वाले हैं और हम ऑस्ट्रेलिया की 46वीं संसद का चुनाव करेंगे। तो किस तरह से ये चुनाव अगली सरकार के चयन का निर्णय करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के चुनाव प्रणाली पर, उसकी व्यवस्था पर कुछ जानकारी। ऑस्ट्रेलिया का फेडरल सिस्टम संवैधानिक तौर पर कॉमनवेल्थ या फेडरल सरकार और राज्यों के बीच उनके अधिकारों का बंटवारा करता है। सभी कानून जो संसद बनाती है वो दोनों सदनों के द्वारा पास होने होते हैं और फिर गवर्नर जनरल द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। सिडनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉडनी स्मिथ बताते हैं कि ऑस्ट्रेलियन राजनीति में फेडरल सरकार एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, क्योंकि ये फेडरल सरकार ही है जो सरकार द्वारा खर्च करने वाली राशि इकट्ठा करती है और अधिकतर खर्च भी सरकार के अपने चलाए प्रोग्राम्स या योजनाओं पर ही होता है। साथ ही फेडरल सरकार राज्यों को पैसा दे सकती है, लेकिन राज्यों को फेडरल सरकार के निर्देश पर ही उसे खर्च करना होता है। तो इसीलिए फेडरल सरकार का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है।
Primarily because it collects most of the money that governments get to spend in Australia. It spends a lot of that money on its own programs, but it can also say to the states and territories, we're going to give you some of this money back, but you have to spend it in a particular way. You have to spend it on roads, for example, or you have to spend it on education, or you have to spend it on hospitals. So the federal government is arguably the most important level of government in Australian politics.
Senate, जिसे अक्सर उच्च सदन कहा जाता है, इसमें 76 सदस्य होते हैं। हर राज्य यानी ऑस्ट्रेलिया के 6 राज्यों में से 12 सदस्य हर राज्य से और इसकी 2 टेरिटरी से 2 सदस्य हर टेरिटरी से, यानी कुल मिलाकर 76 सदस्य। और सेनेट का मुख्य काम है सरकार की तरफ से आए लेजिस्लेशन को देखना, उसे जांचना। सेनेट उन लेजिस्लेशंस को सेनेटर्स के छोटे छोटे ग्रुप्स के पास, एक कमेटी के पास जांचने के लिए भेजती है और निर्णय लेती है कि वो बिल या कानून पास हो या नहीं। और इसी के बारे में प्रोफेसर स्मिथ बताते हैं।
The Senate often sends those proposed laws to a smaller group of senators, a committee, to examine them in more detail and ultimately decides whether or not it likes those proposed laws. It might suggest amendments, that is changes to those proposed laws, or it might say we don't like this law at all, go away and think about doing things a different way.
सेनेटर्स का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर तीसरे वर्ष फेडरल चुनावों के दौरान आधे सदस्य चुने जाते हैं। ये किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के संविधान, जो 1880 के दशक के आखिर में लिखा गया, उसके अनुसार है, और इस प्रबंध को बनाने का कारण क्या है, इसके लिए श्री स्मिथ बताते हैं।
When the men who wrote the constitution in Australia in the late 1880s and 1890s came up with the idea of having a Senate, part of their idea was that the Senate would be a bit of a break on radical ideas, impulsive ideas that a government might have. So in order to do that, they decided that one good way of achieving that would be to have only half the members of the Senate elected at any one election.
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को अक्सर निम्न सदन या लोकसभा कहा जाता है। अभी तक इसमें 150 सदस्य थे, लेकिन इस फेडरल चुनाव से, यानी 2019 के चुनावों से 151 सांसद चुने जाएंगे जो अगले 3 साल के कार्यकाल पर रहेंगे। सांसदों की संख्या में ये बढ़त चुनाव क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर हुई है और इसी के बारे में प्रोफेसर रॉडनी स्मिथ आगे बताते हैं।
Apart from representing geographical areas of Australia, government of the day is formed by the person who is able to gain a majority support within the House of Representatives.
अब वर्तमान में कोलिशन सरकार, जिसका नेतृत्व करते हैं प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, वो इस समय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 76 सीट्स के साथ बहुमत में हैं। लेबर पार्टी के पास 69 सीट्स हैं। प्रोफेसर रॉडनी स्मिथ का कहना है कि मार्जिनल सीट्स चुनावों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। और मार्जिनल सीट्स वो होती हैं जहां दोनों प्रमुख पार्टियों के लिए समर्थन लगभग बराबर सा है।
A marginal seat is a House of Representatives seat in which the two major parties, the Labour Party or the Liberal National Coalition, have reasonably even levels of support. If we think about there being 100% of voters in an electorate or a seat, then if, say, 51% of those support one party and 49% of those support another party, that's a very close election outcome. And so a marginal seat describes a seat with that kind of balance of support. So it could go to one party at one election and another party at the next election.
अब अगर दोनों पार्टियों की सीटों की संख्या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बराबर की हो तब इसका परिणाम होता है एक हंग पार्लियामेंट। हाल ही का उदाहरण लें तो 2010 के चुनाव ऐसे रहे थे जब किसी भी बड़ी पार्टी के पास बहुमत के लिए आवश्यक 76 सीट्स नहीं थी कि ताकि वो सरकार बना सके, और इसी से अल्पमत की लेबर पार्टी ने सरकार बनाई 3 स्वतंत्र सांसदों और ऑस्ट्रेलियन ग्रीन्स पार्टी के साथ मिलकर। हंग पार्लियामेंट की स्थिति के बारे में प्रोफेसर स्मिथ समझाते हैं।
A hung parliament refers to a situation where maybe out of the 150 seats, Labour might have 72, Liberal National parties might have 72, which leaves 6 seats in the hands of independents and minor party MPs. So because the Prime Minister and his or her government has to have the support of a majority of members of the House of Representatives, it means that neither Labour nor the coalition in that circumstance can automatically form government. They have to negotiate with the independent MPs and the minor party MPs in order to form government.
ऑस्ट्रेलिया में इस समय 4 में से एक ऑस्ट्रेलियन का जन्म किसी दूसरे देश में हुआ है और लगभग आधी जनसंख्या ऐसी है जिसमें कम से कम एक अभिभावक का जन्म किसी दूसरे देश में हुआ है, लेकिन ये बहुसांस्कृतिक प्रभाव ऑस्ट्रेलियन राजनीति में दिखाई नहीं देता। अधिकतर तौर पर पार्टियां उन्हीं लोगों को चुनती हैं जिनकी अंग्रेजी प्रथम भाषा है या जो किसी प्रोफेशन में हैं, और अधिकतर ये लोग पुरुष ही हैं, और यही बात प्रोफेसर स्मिथ बता रहे हैं।
Often parties pre-select candidates to run in elections who come from a relatively narrow group of people. Typically they'll be men, typically they'll be people who've worked in the professions, typically they'll be people who speak English as a first language and that's what they grew up doing.
Professor Fethi Mansouri, Alfred Deakin Research Institute for Citizenship and Globalization के director हैं। वो मानते हैं कि पार्टियों को विभिन्नता लाने के लिए नए प्रवासी और बदलती हुई नई संस्कृति के साथ जुड़ना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे बहुत से मुद्दे होते हैं जो प्रवासियों को प्रभावित करते हैं और प्रवासी उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात करना चाहते हैं।
Until we start to see the demographic diversity that we have partially at least represented in the leadership structures that we are developing in Australia, there will always be a bit of a gap between political elite in this particular case and the electorates that they are trying to talk to. And there are a lot of issues that migrants are really, really interested in and care about. I don't think the government or the opposition, for that matter, or maybe some of the minor parties have been able to articulate those in ways that are accessible and understood easily.
चुनाव वाले दिन यानी 18 मई के दिन 15.6 मिलियन ऑस्ट्रेलियन अपना मतदान देंगे, और प्रोफेसर मंसौरी का कहना है कि नए ऑस्ट्रेलियंस के लिए इस प्रक्रिया में शामिल होना खास तौर पर महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि ये आवश्यक है कि नए ऑस्ट्रेलियंस इस देश के लिए सामने खड़ी चुनौतियों को समझें, और प्रवासी समाज की रचना करते हैं और उनकी खास चुनौतियां हैं। प्रोफेसर मंसौरी कहते हैं कि यदि इस समय पार्टियां प्रवासियों के साथ पूरी तरह से नहीं जुड़ती तो एक बड़ी समस्या बन सकती है। चाहे अभी भी समस्या तो है, लेकिन भविष्य में ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी.
एंड वी वांट देम टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस दैट लाई अहेड फॉर दिस कंट्री. माइग्रेशन इज अ ह्यूज कंट्रीब्यूटर टू ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी, बोथ यू नो डेमोग्राफिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, सोशली एटसेट्रा. बट देयर आर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स दैट डू अफेक्ट माइग्रेंट कम्युनिटीज, एंड इफ वी आर नॉट इंश्योरिंग दैट दोज कम्युनिटीज आर फुली एंगेजिंग इन द पॉलिटिकल सिस्टम, देन वी विल हैव अ बिग प्रॉब्लम. एंड आई थिंक इट्स ऑलरेडी देयर, बट इट विल डिटेरियोरेट एंड इट विल बिकम even more of a challenge for us moving ahead.
आपके विचार हमें बताएं. SBS हिंदी को Facebook पर लाइक करें और @SBS हिंदी को Twitter पर फॉलो करें.